दिन भर 27 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। मस्जिद में नमाज इस्लाम में अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजने से किया इनकार।
इस मैटर में कोई भी ऐसा संवैधानिक प्रश्न नहीं अराइज होता है जिसे लार्जर बेंच को भेजा जाए। 29 अक्टूबर डेट लगाइए टाइटल सूट की सुनवाई के लिए।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुकदमे पर क्या होगा असर?
सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि भाई अब ये आपका जो अयोध्या का मामला है वो 3 जजेज ही सुनेंगे, 5 जजेज की बेंच नहीं सुनेंगी।
अडल्ट्री यानी दूसरे की पत्नी से संबंध अब अपराध नहीं।
खास बात है वो ये है कि यहाँ पर स्त्री को संपत्ति मानने से खारिज किया गया है।
मुझे तो लगता है अगर कोई मर्द बाहर किसी औरत के साथ अडल्ट्री करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
आपकी चिट्ठियाँ भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े एक अहम मामले में 1994 के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि व्यभिचार अब अपराध नहीं है। कोर्ट ने इसे दीवानी मामला बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दर्जनों पुरुषों और लड़कों के लापता होने के लिए इराक की सेना और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। लापता होने वालों में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। अधिकार समूह का कहना है कि उसने इस तरह के 78 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से कुछ तो 9 साल के बच्चों के हैं, जिन्हें इराकी बलों ने अप्रैल 2014 से लेकर अक्टूबर 2017 के बीच हिरासत में लिया था। इसके बाद दोबारा उन्हें किसी ने नहीं देखा। ह्यूमन राइट्स वॉच के मध्य पूर्व के निदेशक लामा फाखी ने कहा, पूरे इराक में नाकों से ये लोग लापता हो गए। लड़कों और पुरुषों को उनके घर से भी ले जाया गया। हम इराक के प्रशासन से मांग करते हैं कि इन घटनाओं की जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। ये थे ह्यूमन राइट्स वॉच के मध्य पूर्व के निदेशक के शब्द। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को गलत बताया जिनमें उन्होंने कहा था कि नवंबर में होने जा रहे मध्यावधि चुनावों में चीन हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा था। गेंग शुआंग ने कहा, चीन अपने इस सिद्धांत पर अडिग है कि वो किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। ये हमारी कूटनीतिक परंपरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अच्छी तरह जानता है कि इस तरह के दखलंदाजी में कौन माहिर है। हम अमेरिका को सलाह देंगे कि इस तरह के बेमतलब आरोप ना लगाए और ऐसे कामों से बचे जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और बुनियादी हितों को प्रभावित करते हों। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन 3 दिन की यात्रा पर जर्मनी पहुंचे हैं, जहां वो चांसलर अंगेला मर्केल से बात करेंगे। नेटो के ये दो अहम सहयोगी देश अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले साल उस समय तनाव पैदा हो गया था जब अर्दोआन की कार्यकारी शक्तियां बढ़ाने के लिए किए जा रहे जनमत संग्रह के लिए तुर्की के नेताओं को जर्मनी ने अपने यहां प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद अर्दोआन ने बर्लिन की सरकार को नाज़ी कह दिया था। पुर्तगाल में अभियोजकों ने 12 संदिग्धों पर लापरवाही के कारण इंसानों की हत्या करने के मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया है। पिछले साल जून में जंगल में लगी आग के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कुछ लोग वाहन पर सवार थे और अनजाने में वो उस जगह चले गए जहां पर आग लगी हुई थी। 3 अभियुक्तों पर सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी थी जिन्होंने सड़क को बंद नहीं किया था। बाकी लोग नागरिक सुरक्षा और म्यूनिसिपल अधिकारी हैं। उस बिजली कंपनी के अधिकारी भी अभियुक्त बनाए गए हैं जिन्होंने पेड़ पौधों की समय पर काट छांट नहीं की, जिस कारण बिजली की तारों से वे संपर्क में आ गए और आग भड़क उठी। ईरान के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि देश के सैनिकों का सम्मान किए जाने के लिए बनाए गए पोस्टर में इसराइली सैनिकों की तस्वीर कैसे छप गई। शिराज शहर में लगाए गए बड़े से पोस्टर में पहाड़ी की चोटी पर खड़े 3 सैनिकों की तस्वीर लगाई गई थी। सोशल मीडिया में जब ये कहा जाने लगा कि तस्वीर ईरान के सैन्य प्रतिद्वंद्वी इसराइल के सैनिकों की है तो इसे तुरंत हटा लिया गया। पाकिस्तान सरकार ने 8 भैंसों की नीलामी करके $25,000 यानी करीब 18 लाख रुपए कमाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन भैंसों को दूध के लिए पाला हुआ था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों के नाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडल्ट्री यानी किसी पुरुष के दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने की आपराधिकता को खत्म कर दिया। उसके तमाम पहलुओं पर कार्यक्रम में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मस्जिद में नमाज को इस्लाम का अभिन्न अंग न बताने वाले अपनी पुरानी राय को बरकरार रखा और इसे बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया। ये मामला अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मामले से जुड़ा था। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट सुनिए।
पिछले दो दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ताबड़तोड़ फैसले आ रहे हैं। लगभग सभी बेंचों की अगुवाई जल्द रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्र कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद से जुड़े इस अहम फैसले में भी वे मौजूद थे। मसला यह था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। साल 1994 में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा गया आज के इस फैसले में। साथ ही तीन जजों वाली बेंच ने फैसले को फिर से विचार के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। फैसले के बाद याचिकाकर्ता हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने बीबीसी से कहा,
अदालत ने 2:1 की मेजोरिटी से कहा कि ये मैटर लार्जर बेंच को भेजे जाने की जरूरत नहीं है। इस मैटर में कोई भी ऐसा संवैधानिक प्रश्न नहीं अराइज होता है जिसे लार्जर बेंच को भेजा जाए, और 2:1 की मेजोरिटी से जजमेंट आया है। 29 अक्टूबर डेट लगाई है टाइटल सूट की सुनवाई के लिए।
तीन जजों की बेंच में शामिल चीफ जस्टिस मिश्र और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि यह केस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले से अलग है और मुख्य मामले पर इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने दूसरे जजों की राय से असहमति जताई है। जस्टिस अब्दुल नजीर का कहना है कि मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है और इस विषय पर फैसला धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। वैसे अदालत ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जमीन विवाद पर कहा है कि टाइटल सूट को आस्था से न जोड़ा जाए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी के वकील मोहम्मद शमशाद भी फैसला सुनने के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने बताया,
जो 1994 में ये कहा गया था कि मस्जिद मुसलमानों की नमाज के लिए एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, और उस मुकदमे से इस अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन एक फैक्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब टाइटल सूट डिसाइड किया था तो वो उस 1994 के उस ऑब्जर्वेशन को काफ़ी रिलाय अपॉन किया है।
यानी कुछ लोगों को लगता है कि आज के फैसले का असर सीधे नहीं तो किसी न किसी तरह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के उस केस पर पड़ सकता है जिस पर सुनवाई अब अगली 29 अक्टूबर से होगी। हालांकि मामले पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगामी फैसले को लेकर उम्मीद जताई है। इधर दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के मुफ्ती डॉक्टर मुकर्रम की राय थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा,
हमारा मानना तो यह है कि ये लार्जर बेंच को केस जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए भारत के 130 करोड़ लोगों की आस्था और अकीदत का मसला है। बहरहाल उन्होंने जो कहा है वो कुछ समझ के ही कहा होगा, और बहरहाल हमें यही सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों को पूरा हक मिले, और हमारे लिए मस्जिद भी ज़रूरी है, नमाज भी ज़रूरी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें उस बड़े मुकदमे पर हैं जिसका ताल्लुक अयोध्या से है। जी हाँ, अक्टूबर से इस मामले पर सुनवाई शुरू होनी है कि ढाए गए विवादित ढांचे की जमीन आखिर किसकी है। मामला उन तीनों पक्षों ने दायर किया है जिनके एक एक हिस्से में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 बराबर के हिस्सों में बांटने का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में दिया था। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
जानकारों का कहना है कि इस फैसले से अयोध्या विवाद की जल्द सुनवाई की राह आसान हो गई है। अब सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। कई जानकारों का कहना है कि अगर अदालत इस मामले को बड़ी बेंच के पास विचार के लिए भेजती तो अयोध्या के मुख्य मुकदमे पर सुनवाई में कुछ और देर हो सकती थी। इसके अलावा आज के फैसले के और क्या असर हो सकते हैं, मैंने पूछा सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल से।
मेन क्वेश्चन ये था कि क्या जो आपका बाबरी मस्जिद अयोध्या डिस्प्यूट है और इसका जो मैटर कोर्ट के सामने है, क्या इसको 5 जजेस की बेंच को सुनना चाहिए या 3 जजेस की बेंच को ही सुनना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को यदि लीगली ब्रेक डाउन करें तो राजीव धवन साहब का ये सबमिशन था कि इसे 5 जजेस को रेफर करना चाहिए, और जो मेन आर्ग्यूमेंट था कि क्यों रेफर करना चाहिए वो इसलिए था कि इस केस के पहले एक दूसरा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने डिसाइड करा है, जो है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस्माइल फारूकी में ये इश्यू नहीं था मॉस्को को लेकर, लेकिन इसके बाद भी इस्माइल फारूकी के जजमेंट में इस मुद्दे पर कि क्या रिलीजन में एसेंशियल है काफी सारी टिप्पणियां की गई। तो राजीव धवन साहब ने ये दिखाया कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद पे, इसमें काफी ये इस्माइल फारूकी के जजमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ है, और काफी सारे पैराग्राफ्स बताए कि कैसे जो है वो हाईकोर्ट के जजमेंट में इस्माइल फारूकी का रेफरेंस दिया गया है। तो राजीव धवन साहब का ये कहना था कि इस्माइल फारूकी में बिना ये देखे कि इस्लाम रिलीजन क्या कहता है, उसमें मॉस्क की क्या इंपॉर्टेंस है, बिना इन सारी बातों को देखते हुए आपने इस्माइल फारूकी में टिप्पणियां कर दी। क्योंकि वो 5 जजेस का जजमेंट है तो वो जो है हाई कोर्ट पे और बाकी सारे कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है। तो अब यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मैटर पे अपील सुन रहा है तो पहले उसको एक बड़ी बेंच के सामने जाना पड़ेगा ताकि इस्माइल फारूकी में जो ऑब्जर्वेशन है उनको बदला जा सके।
जी, ये तो पृष्ठभूमि की बात हो गई, लेकिन अगर आज के फैसले के असर की बात करें खासतौर से बाबरी विवाद के संबंध में तो क्या हो सकता
है? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि भाई अब ये आपका जो अयोध्या का मामला है वो 3 जजेस ही सुनेंगे, 5 जजेस की बेंच नहीं सुनेंगी। अच्छा, एक बात ये भी समझना जरूरी है कि इस्माइल फारूकी में जितनी सारी चीजों को कहा है उसका अब फैसला नहीं हो पाएगा। जजेस ने ये बोला है, जस्टिस भूषण ने और जस्टिस मिश्रा ने, कि देखिए इस्माइल फारूकी में जो टिप्पणियां की गई थी वो उसके तथ्यों के लिए लागू होती हैं। जजेस ने, जस्टिस भूषण ने और जस्टिस सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा है कि इस्माइल फारूकी में जो भी चीजें कही गई हैं वो बाबरी मस्जिद के मामले में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हाईकोर्ट का जो जजमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है यदि उसमें उनको रेफरेंस दिया गया है तो कैसे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बड़ा ही जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है।
मुख्य बाबरी के मुकदमे से जोड़ते हुए किसके लिए झटका माना जा सकता है, किसी के लिए या किसी के लिए राहत मानी जा सकती है या किसी के लिए झटका या राहत नहीं है?
देखिए, मेरे ख्याल से झटका तो किसी के लिए भी नहीं है। वो ये देखना पड़ेगा कि अब जब कोर्ट ने कह दिया है कि इस्माइल फारूकी में इतनी भी सारी कमेंट्स दी गई हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पड़ेगा, तो लीगली इसका मतलब ये होता है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, इम्प्यून जजमेंट है जो अपील में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें भी जितनी इस्माइल फारूकी की रेफरेंस दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन पे तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो एक तरीके से जब उस पे तवज्जो नहीं दी जाती है तो दोनों पार्टीज उसको अपने पक्ष में कैसे आर्ग्यू करती हैं ये तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना जरूर सही होगा कि मुस्लिम पक्षकार हैं, वो चाह रहे थे कि ये जो मामला है वो 5 जजेस की बेंच सुने।
सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल को सुन रहे थे आप। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडल्ट्री यानी किसी विवाहित स्त्री से उसके पति की सहमति के बिना बनाए गए संबंधों को अपराध बताने वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया। 1860 में बना 158 साल पुराना ये कानून अब रद्द हो गया है, यानी अडल्ट्री जिसकी एक सरल व्याख्या शादी के बाहर संबंधों के तौर पर की जाती है अब अपराध नहीं है। दिल्ली से गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट।
किसी शादीशुदा महिला से उसके पति की सहमति के बिना सेक्स अब अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से पहले ऐसे करने वाले शख्स को 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के विवाहेतर संबंधों को अपराध ठहराने वाली धारा 497 को आज रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। औरत और मर्द के बीच भेदभाव करने वाले इस कानून के रद्द होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील कालमेश्वरम राज ने कहा,
Nobody in the country can be prosecuted on the ground of adultery, labeling it as a criminal offense. The court has said
अडल्ट्री अब अपराध नहीं है। इसके आधार पर अब देश के किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 497 मनमानी और बहुत पुरानी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कानून प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। ये कानून महिलाओं को पति की संपत्ति बताता है।
ये थे याचिकाकर्ता के वकील के शब्द। महिला अधिकारों की बात करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। लेखिका अनुशक्ति कहती हैं,
भारत की कुछ इतिहास अगर पलटते हैं, मिथिकीय इतिहास ही पलटते हैं, तो बहुत जगह राम भी देखते हैं, राम किसी के दबाव में आकर के सिर्फ शक के आधार पर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि औरतें हमेशा से ना विवाहितर संबंध की बात जैसे हुई, तो औरतों ये मतलब ये पूरा का पूरा घूम करके औरतों के ऊपर ही आ जाएगा, पुरुष करेंगे भी निकल भी चले जाएंगे, और औरतों को ना तो एजेंसी है ना ही वो शिकायत कर सकती है। मतलब क्या था ये? शुक्र है कि आज एकमत से ये पूरा अच्छा फैसला हुआ, सबने एकमत से ये बात बोली कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों के अधीन नहीं आती, पुरुषों का स्त्रियों पर कोई स्वामित्व नहीं है। स्वामी ये वर्ड जो स्वामी है ना, इसका हटना बहुत ज्यादा आवश्यक था।
इटली में रहने वाले एनआरआई जोसेफ शाइन ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री अपराध नहीं है, लेकिन ये तलाक का आधार हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह कोर्ट के इस फैसले पर चिंता जताती हैं।
मेरा मानना है कि आपने 497 खत्म करके जो फैमिली की बेसिस थी उसको खत्म कर दी, क्योंकि आपने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया। आपने सिर्फ ये बोल दिया कि अगर एडल्ट्री हो रही है आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो क्या कोर्ट चाहता है कि हर शादी टूट जाए और डिवोर्स में समाप्त हो? उन बच्चों का क्या होगा जो ऐसी मैरिज में है, जो अब अपने माँ बाप को रोज किसी पर पुरुष या पर पत्नी के साथ, पर स्त्री के साथ देखेंगे? तो ये सब जो सोशल इश्यूज है वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिए।
विवाह की संस्था को बनाए रखने के नाम पर इस कानून के पक्ष में कई तरह की दलीलें दी गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को बचाना पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। गुरप्रीत सैनी, BBC दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महिलाएं क्या सोचती हैं? भोपाल से ये आवाजें शुरह नियाजी ने भेजी हैं।
एक तरफ ये विचार आ रहे हैं कि ये परिवार नाम की संस्था को तोड़ने वाला फैसला हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि ये किसी भी तरीके से व्यभिचार को सपोर्ट करने वाला नहीं है, बल्कि इसमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर स्त्री को संपत्ति मानने से खारिज किया गया है।
मुझे तो लगता है अगर कोई मर्द बाहर किसी औरत के साथ एडल्ट्री करता है और अगर ये रिश्ते वो बाहर बनाता है अपनी बीवी से छुप के, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये कहना कि ये कानून बहुत पुराना है और इसमें बराबरी नहीं थी, तो यह बात तो बिल्कुल गलत है।
अब बिहार से कुछ आवाजें सुनिए जो सीटू तिवारी ने भेजी हैं।
हमको लगता है कि ये समाज के लिए बढ़िया चीज नहीं है। ऐसे तो चाहेंगे तो कोई किसी के साथ, कोई पत्नी किसी के साथ, पति किसी के साथ। ये छूट देने से हमारी महिलाओं पुरुष में बीमारी का एक जड़ बनेगा।
भले ही कानून में कोई इसे नहीं रोक टोक हो सकता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ये होगी कि घर और परिवार दोनों बिखर जाएंगे और आपसी विवाद बढ़ता जाएगा, सामाजिक तौर पर विवाद बढ़ता जाएगा।
प्रेम एक ऐसी चीज है मुझे लगता है जिससे मन मिलेगा, उसी के संग मन बनेगा। ये एक अच्छी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर दिया है तो ये एक अच्छा है।
एडल्ट्री कानून को रद्द किए जाने का भारतीय समाज पर क्या असर हो सकता है, इसके तमाम पहलू क्या हो सकते हैं, इस पर अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील बजिंदर सिंह और स्त्री विषयों पर लिखने वाली लेखिका नीलिमा चौहान से। मैंने पहले बजिंदर सिंह से पूछा कि आसान जुबान में वो इसे किस तरह समझाएंगे।
देखिए, आम लोगों की जुबान में ये है कि एक पति और पत्नी के बीच में विवाह संस्था मानती है कि आपके सेक्सुअल रिलेशन है, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। अगर आप मैरिज से बाहर किसी अन्य पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो अडल्ट्री बोली जाती है।
कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी अब जो तथाकथित अडल्ट्री थी उसमें शामिल जो भी व्यक्ति था उस पर केस नहीं होगा।
जी नहीं होगा उस पर। अभी इसको ये मान लिया गया है कि फाइनली सेक्स है जो 18 साल से अब दो व्यक्तियों के बीच में प्योरली कंसेंसुअल और एक पूरा ही निजी प्राइवेट अफेयर है, उसमें थर्ड पर्सन इवन इफ ही इज हस्बैंड और व्हाटएवर हैज नो रोल टू प्ले।
हमारे साथ नीलिमा चौहान भी हैं, आप लेखिका हैं और आपकी एक किताब बड़ी चर्चित हुई, पतनशील पत्नियों के नोट्स। तो एक महिला होने के नाते भी और देश समाज को, भारत के समाज को जिस तरह से आप समझती हैं, उस नज़रिए से भी इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
मेरी पहली प्रतिक्रिया तो इस फैसले पर बहुत जाहिर तौर पर की खुशी की ही है, लेकिन इस किताब को जिसका नाम पतनशील पत्नियों के नोट्स है, इसको लिखने के दौरान और इसके प्रकाशन के बाद में जो मेरे अपने अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी तरह के कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो बदलाव हैं वो स्त्री की स्थिति को एकदम से रातों रात नहीं बदल देते हैं। उसकी जो यौन दासी वाली स्थिति हमारे मैरिज के स्ट्रक्चर्स में है वो लगातार बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है। स्त्रियां खुद भी अपने आप को जब सेक्सुअली आज़ाद होते हुए देखती हैं तो वो उस सीन को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
चूँकि आप दोनों ही लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं बजिंदर जी, तो मेरा सवाल ये है, आपकी जो एक दलील ये भी है कि
इससे विवाहेतर संबंध जिसको कहा जाता है, लोगों में ये चिंता पैदा हो गई है खासतौर से परंपरावादियों में कि अब विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, तो एक समाज के तौर पर क्या ये कोई एक बड़ी चिंता है?
समाज शास्त्रीय तरीके से देखें तो एक बहुत ही हेल्दी बात है अगर आपके विवाहेतर संबंध बनते हैं। ये आपके ऑलरेडी हैं अभी तक पूरी दुनिया में। आप देखेंगे पूरी विवाह संस्था के इतिहास में मैन कभी भी मोनोगैमस नहीं रहा है, उसके लिए पेपर पर मोनोगैमस यूज हुआ है, मैन हमेशा ही पॉलीगैमस रहा है और वुमन को मोनोगैमस बनाया गया क्योंकि मैन के पास इकोनॉमिक मीन्स रहे हैं। तो अभी तो आप वुमन से इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते वो रियल में इसको अप्रिशिएट कर पाए या इसको आगे ले सके। एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक स्मॉल सेक्शन कर सकता है, एक आगे का समाज की जो स्वस्थ मानसिकता है उसके लिए एक अच्छा कदम है क्योंकि आप उसे अप्रेस किए हुए दबाए हुए हैं। इसलिए देखिए आप छोटी छोटी बच्चियों के रेप क्यों होते हैं, पत्नी के साथ भी पति रेप क्यों कर रहा है। एक लेवल पर जाकर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि मोनोगैमी जो है वो मैन को भी, पैट्रियार्कल मैन को भी अप्रेस करती है, वो उसके बारे में अवेयर हो या ना हो।
हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते
हैं? इस फैसले की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसके बाद जो एडल्ट्री है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं आउटसाइड मैरिज, उनमें से बहुत उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि गिल्ट का जो भाव है और जो अपराध बोध का जो भाव है वो जाता रहेगा।
लेखिका नीलिमा चौहान कह रही थी कि अपराध बोध का भाव जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील बजिंदर सिंह भी उनके साथ थे, उनसे बात मैं कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के अभियुक्त मेहुल चौकसी को एंटीगा से भारत वापस भेजे जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत की विदेश मंत्री को एंटीगा के विदेश मंत्री ने यह आश्वासन न्यूयॉर्क में दिया। मेहुल चौकसी ने भारत से फरार होकर एंटीगा में नागरिकता ले ली थी। एक रिपोर्ट के साथ सलीम रिजवी।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने आए एंटीगा के विदेश मंत्री ईपी चैट ग्रीन ने न्यूयॉर्क में ही मौजूद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर उन्हें इस बात पर आश्वस्त किया कि मेहुल चौकसी को जल्द ही भारत वापस भेजे जाने की कोशिश की जा रही है। एंटीगा के मंत्री ने मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के सिलसिले में अपने देश में कुछ अदालती कार्रवाई को देरी का कारण बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बारे में पत्रकारों को बताया।
विदेश मंत्री ने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि अगर इस मामले को हम जितनी जल्दी सुलझा सकें वो तो अच्छा होगा हमारे लिए, और तो उसके जवाब में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इसमें कुछ लीगल एंगल्स हैं जिसको एग्जामिन करेगा, इसमें कुछ कोर्ट के प्रोसीडर्स हैं उसको भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है, लेकिन जो उनका उनके सरकार का कमिटमेंट था और जो उनके प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था इस मामले को लेके, उसको उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोई समय सीमा नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि ऐसे मामलों में समय सीमा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनका कहना था कि एंटीगा के विदेश मंत्री ने अपने देश की और एंटीगा के प्रधानमंत्री की इस मामले में प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उधर भारत में एक विशेष अदालत ने मेहुल चौकसी को एक नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की एक नोटिस का जवाब देने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। इसी महीने की शुरुआत में चौकसी ने पहली बार एक वीडियो के जरिए सफाई देने की कोशिश भी की थी। एक मिनट के वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। पंजाब नेशनल बैंक में इस साल की शुरुआत में ही 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी एमी, उनका भाई निशाल और चाचा मेहुल चौकसी मुख्य अभियुक्त हैं। बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया। 14 फरवरी को आंतरिक जांच पूरी हुई थी, लेकिन तब तक सभी अभियुक्त देश से फरार हो चुके थे। अब भारत की एजेंसियां उनके प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगी हुई हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आज गुरुवार है और आज आप सुनते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब आपकी राय में।
आपकी राय। नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में आपकी चिट्ठियां लेकर मौजूद हैं
सूर्यांशी पांडे। तो राजेश जी, आज ईमेल का सिलसिला सबसे पहले शुरू करते हैं और आज का पहला ईमेल भेजा है गणेश प्रसाद हुजदार ने, जो ये लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत की गई विवेचना में, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तलाकशुदा पत्नी रेहाम खान के दुखद वैवाहिक जीवन के बारे में था, वो बेहद उन्हें पसंद आया, लेकिन उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ क्योंकि उनकी जो कहानी थी वो उनके दिल को छू गई।
बहुत शुक्रिया। ये कोशिश की थी कि अंग्रेज़ी में जो ये किताब लिखी है रेहम खान ने, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और ऐसे वक्त जबकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और किताब भी ऐसे वक्त पर आई और बहुत चर्चा हो रही थी, तो हमें ये लगा कि हिंदी के जो श्रोता हैं उन तक हमको ये कहानी पहुँचानी चाहिए। आपको पसंद आई, आपका शुक्रिया।
और उन्होंने एक बात ये भी लिखी कि आसानी से तलाक लेना और देना बहुत गलत बात है और इससे औरत की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उन्होंने इस बात की भी टिप्पणी की।
ये उनके विचार हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि तलाक की ज़रूरत हो या तलाक की नौबत आ जाए, और ये एक तरह से दो लोगों का निजी मामला है कि उनका जीवन कैसे चल रहा है और फिर वो आपस में तय करें। तो तलाक के बारे में किसी तरह की नैतिकता का कोई वैसी कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ये दो लोग ही बेहतर जानते हैं कि वो साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाए।
और अगला मेल जो भेजा है वो बहादुरगंज किशनगंज से भेजा है, बिहार से लिखते हैं गौतम दत्ता। ये लिखते हैं कि शाम और सुबह की सभा में श्रीमान आदर्श राठौर जी से मालदीव पर दुनिया जहां सुनी, जो उन्हें बेहद पसंद आई। और यहां पर ये जरूर बताना चाहेंगे गौतम दत्ता जी कि आपने आदेश राठौर लिखा हुआ है, बल्कि उनका नाम आदर्श राठौर है।
और आदेश कुमार गुप्त भी हैं जो आपको खेल समाचार सुनाते हैं और आदर्श राठौर हैं। पत्र लिखने के लिए आपका शुक्रिया।
ये अगला पत्र मैं पढ़ने जा रही हूँ राजेश जी, ये आपको ना 50 साल पहले ले जाएगा बीबीसी।
क्या बात
के?
क्या बात है, मैं बीबीसी में 21 साल से हूँ, यानी कि उससे बहुत पहले की बात।
हाँ, और ये श्रोता 50 साल से सुनते आ रहे हैं। इनका ये कहना है, रफीक इब्राहिम परकार जो हैं जिला रत्नागिरी से लिखते हैं, महाराष्ट्र से।
बहुत ही नियमित रूप से पत्र लिखते हैं और बहुत पुराने श्रोता हैं।
हाँ, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो जो गाना है जो काफी प्रसिद्ध है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये उन्होंने बीबीसी हिंदी रेडियो को लिखा है। और साथ ही साथ उन्होंने कई कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है, जैसे बाल जगत, इंद्रधनुष, विज्ञान जगत, जो बहुत पहले आया करते थे। और उन्होंने कई जो संवाददाताओं के भी नाम लिखे हैं, जैसे मार्क टल्ली का भी नाम लिखा हुआ है, रत्नाकर भारती, पुरुषोत्तम लाल पावा, परवेज आलम, अचला शर्मा, रमा पांडे, सीमा चिश्ती, कुर्बान अली जैसे संवाददाताओं के नाम लिखते हुए उन्होंने याद किया है बीबीसी के इन कई कार्यक्रमों को।
इनमें से कई लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है, परवेज आलम के साथ, अचला शर्मा के साथ, और वाकई वो एक अलग दौर था जब बीबीसी हिंदी के रेडियो प्रसारण घर घर में सुने जाते थे, लेकिन ये टेलीविजन से के आने से पहले का ज़माना था। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी इतने लंबे समय बाद तक ये हमसे जुड़े हुए हैं और हमें पत्र लिखते रहे हैं। और अगर आप इसी तरह हमें पत्र लिखना चाहें तो हम अपना चलते चलते आपको पता बता दें। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल से हमें चिट्ठियाँ भेजना चाहें तो हमारा पता वही है, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
अपनी प्रतिक्रियाएं चिट्ठियों और ईमेल की शक्ल में हम तक इसी तरह पहुंचाते रहें। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन के मैदान पर, जहां पर कोरिया ओपन में साइना नेहवाल का विजय अभियान जारी है। भारतीय शटलर ने आज महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफायर कोरिया की किम इन गा को 21-18 से हरा दिया। साइना दुनिया की 10वें जबकि किम 41वें नंबर की महिला शटलर हैं। साइना ने 37 मिनट में यह मुकाबला जीत लिया। उन्होंने मैच के दौरान 78 में 42 रैली पर अंक हासिल किए और अब पांचवी वीरता प्राप्त साइना का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं डेविस कप की, जो टेनिस में खेला जाता है। और अब ये कप आपको एकदम नए फॉर्मेट में नजर आने वाला है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डेविस कप को नए फॉर्मेट में लॉन्च तो किया ही है, और ये मुकाबला 2019 और 2020 में कहाँ होगा उसकी भी घोषणा कर दी है। और अब मैड्रिड में सबसे पहले खेला जाएगा इस नए फॉर्मेट पर डेविस कप।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े एक अहम मामले में 1994 के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया है। भारत ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि व्यभिचार अब अपराध नहीं है। कोर्ट ने इसे दीवानी मामला बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दर्जनों पुरुषों और लड़ाकों के लापता होने के लिए इराक की सेना और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलत दावा किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन 3 दिन की यात्रा पर जर्मनी पहुंचे हैं। पीवीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों और ताजा तरीन विश्लेषण के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।